आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 9 है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेरिडिटी का मीनिंग जो होता है वो होता है कि द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स में मौजूद होते हैं। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे डीएनए में मौजूद है, हमारे जीन्स में मौजूद हैं, उनका पास ऑन होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज हेरिडिटी। तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए का कॉपी बना करके जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखना चाहिए, जनरल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वो क्यों होते हैं? डीएनए की कॉपी बनाने की वजह से। तो इसे हम हेरिडिटी कहते हैं और इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि जो नए ऑर्गेनिजम्स बने, नया जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म बने, उसकी जनरल अपीयरेंस जो हो वो अपने पेरेंट के जैसी ही हो। उसके बाद अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाती है। जब डीएनए की कॉपी बनाई जाती है तो क्योंकि डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, और एक्यूरेट ना होने की वजह से, 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से वहां पर थोड़ी बहुत वेरिएशन देखी जाती है, जिसकी वजह से जो आने वाली नई जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स है उनमें हल्का बहुत फर्क होता है, लेकिन उससे उनके जनरल अपीयरेंस पर फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो 100% एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता है। तो ऐसा तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर क्योंकि दो इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स के वेरिएशंस जो हैं वो कंबाइन होकर के नए जनरेशन को एक कंबाइंड वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से नया जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस होंगे और उसके सर्वाइवल के चांसेस भी वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप लोग किसी छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो आपको जनरल अपीयरेंस में उतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि वेरिएशन की जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी बढ़ जाती है जब हायर ऑर्गेनिजम्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से वहाँ पर वेरिएशन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाने की वजह से हम लोगों को जो नया ऑर्गेनिज्म नया जनरेशन का दिखता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हम नोटिस कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंसानों के जो बेबीज होते हैं वो आप लोगों को ऐसा नहीं दिखता कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट्स के। हाँ, उनके जो जनरल अपीयरेंस होती है, हाथ एक जैसे होते हैं, दो हाथ दो पैर दो आंखें, इस तरीके से जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो सेम होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते हैं। जो किड्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे वेरिएशंस के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो हमें थोड़ा बहुत वेरिएशन विजिबल भी होता है, जो हम देख पाते हैं कि जो किड्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो। अब ये तो नॉर्मली बात हुई कि अगर दो इंडिविजुअल्स एक जनरेशन के अंदर कंबाइन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें कुछ वेरिएशंस होंगी। अब मान लो जो ये नेक्स्ट जनरेशन बनी है, इस ये भी किसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद आगे जाके जो नेक्स्ट अगले आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें और भी ज़्यादा वेरिएशन होंगे, फिर इसी तरीके से आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो जनरेशन है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेरिएशन जो है वो भी अक्यूमुलेट होती जाएगी, वो इकट्ठा होती चली जाएगी। तो हम समझना चाहते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही है, आगे आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे वेरिएशन भी बढ़ते जा रही है, अक्यूमुलेट होती जा रही है, वो इकट्ठा होते जा रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है इंडिविजुअल्स पर या फिर पॉपुलेशन के ऊपर, किस तरीके से प्रभाव इसका पड़ता है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है चेंजेस पॉपुलेशन में या फिर इंडिविजुअल में, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो, जब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। अब वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस तो होते ही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े ज्यादा वेरिएशन होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस वक्त डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए की कॉपी बनना इज बेसिकली इनहेरिटेंस, क्योंकि डीएनए की कॉपी बनने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है पहले वाले पेरेंट की जनरेशन में, उससे वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि जो नया जनरेशन बने उसकी जनरल अपीयरेंस अपने पेरेंट के जैसी ही हो। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? ट्रांसफर है ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसका मोटिव क्या होता है? इसका बेसिक मोटिव होता है कि जो बेसिक जनरल अपीयरेंस है वो तो पेरेंट के जैसी ही होनी चाहिए जो नया जनरेशन आने वाला है उसका, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस भी साथ में होते रहने चाहिए जो कि वेरिएशंस के रूप में होने चाहिए। उसका फायदा क्या क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि जब नया जनरेशन बना है रिप्रोडक्शन होने के बाद में, तो वहाँ पर उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसकी जनरल अपीयरेंस सेम होने की इन्फॉर्मेशन भी है, साथ में कुछ वेरिएशन दिखाने की भी उसके अंदर चांसेस है। और जैसे जैसे उस जो नया जनरेशन बना है उससे भी जब नया जनरेशन बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो वहां पर क्या होगा कि उसके अंदर जो पहले से वेरिएशन आई है वो तो उसमें है ही, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो और भी वेरिएशन शो करेगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे अगली अगली जनरेशन आती जाती हैं, वैसे वैसे वेरिएशन जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। और ये आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 142 पर फिगर 9.1। इसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि मान लो जो सबसे ऊपर वाला बिल्कुल पूरा डार्क ब्लू कलर का है वो एक बैक्टीरिया है सपोज, और वो बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो दो में डिवाइड कर जाता है, और दो में डिवाइड करने से पहले उसने डीएनए की कॉपी बनाई थी जो उसने एक अपने पास रखी और एक पेरेंट के पास रही डीएनए की कॉपी, और एक डॉटर बैक्टीरिया के पास चली गई जो डीएनए की कॉपी थी। तो यहाँ पर जैसे ही नया डॉटर जब बना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, उसमें जो कलर आप लोगों को चेंज करके दिखाया जा रहा है वो बेसिकली वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती जाती है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, बहुत ही थोड़ी, बहुत माइनर वेरिएशन होती है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद वो जनरेशन जो नई बनी है अगर वो आगे फिर से नई जनरेशन बनाती है तो उसमें क्या होगा कि पहले वाली उसके अंदर जो वेरिएशन आई थी वो तो उसमें है ही है, साथ में नई वेरिएशन और आ सकती है। तो इससे क्या होगा कि वेरिएशन जो है वो बढ़ जाएगी, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया भी गया है कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो प्योर ब्लू कलर से दिखाई गई है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में दोनों बैक्टीरियाज में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाए गए हैं, एक में रेड कलर से दिखाया गया है, एक में ग्रीन से दिखाया गया है। उसके बाद जब उनसे भी नेक्स्ट जनरेशन बनी है डिवीजन होने के बाद में, तो रेड कलर तो उसमें पहले से ही है, साथ में थोड़े और चेंजेस भी वहाँ पर दिखाए गए हैं। कलर चेंज से बेसिकली यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि वेरिएशंस आ जाते हैं जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, और उसमें हम लोगों को विजिबल वेरिएशन दिखने लगते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ह्यूमंस के केस में देखा ही हुआ है कि जो नेक्स्ट बेबी का फॉर्मेशन होता है वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट्स के, उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं तो थोड़ी बहुत डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल बिल्कुल सेम तो नहीं है अपने पेरेंट के अपीयरेंस में। अब यहाँ पर वेरिएशन होने का फायदा एक तो आप देख सकते हैं कि फिगर 9.1 में जो लास्ट में चार बने हैं बैक्टीरियाज, पहले एक एक से डिवाइड होकर के दो, दो से चार बने हैं, तो चारों की चारों कोई भी सिमिलर नहीं है, सभी के सभी अलग हैं एक दूसरे से, उनमें थोड़े थोड़े अंतर होने की वजह से ही इनका अपना खुद का अस्तित्व है, तो ये अलग अलग हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से वेरिएशन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चारों बैक्टीरियाज इन्वायरमेंट में होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनकी हर चीज़ सहन करने की क्षमता सेम सेम होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस होने की वजह से इनके अंदर जो चीज़ें हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से, सपोज बहुत ज़्यादा हीट है, तो इनमें से कोई बैक्टीरिया ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा हीट में भी सर्वाइव कर जाएगा, कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा कोल्ड में सर्वाइव कर जाएगा, कोई ऐसा होगा जो दोनों में से एवरेज वाले टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेरिएशन होने की वजह से जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइव करने की इंडिविजुअल्स की वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पेज नंबर 143 पर, तो आप लोगों को सबसे शुरुआत में एक लाइन लिखी गई है कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एज वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन लेटर सेक्शंस। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ। देखो, जैसे जैसे आप लोगों ने देखा कि वेरिएशन आ रही है बैक्टीरिया के अंदर, क्या हो रहा है, चांसेस जो है वो सर्वाइव करने के बेटर हो रहे हैं, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ कुछ अलग अलग क्षमता है। कुछ बैक्टीरिया की ऐसी क्षमता है कि वो बहुत ज़्यादा हीट में सर्वाइव कर सकता है, दूसरी की क्षमता है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही मान लो अगर ऐसा इन्वायरमेंट आ जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे जिनकी हीट सहने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर था, इन्वायरमेंट ने क्या चेंज डाला। इन्वायरमेंट का फैक्टर का मतलब है बेसिकली क्या प्रभाव, जो इन्वायरमेंट में क्या बदलाव आ रहा है उससे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट में क्या बदलाव आया, इन्वायरमेंट में बदलाव आया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो ऐसे में कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, वो बैक्टीरिया जिनकी हीट ज़्यादा सहने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में बदलाव था, ज़्यादा गर्मी, जिससे प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव ये पड़ा कि वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए जिनकी हीट सहने की कैपेसिटी थी। अगर वो सर्वाइव करेंगे तो वही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, इन्वायरमेंट में बदलाव की वजह से कुछ अलग प्रकार के बैक्टीरियाज का सिलेक्शन हो गया। अब ये सिलेक्शन का मतलब ऐसे नहीं कि सिलेक्शन पूरा वैसे हुआ है, लेकिन सिलेक्शन के जैसा वो शो होने लगता है, क्योंकि वहां पर हुआ क्या है कि वही वाले बैक्टीरिया सर्वाइव ही किए हैं जो ज़्यादा गर्मी सह सकते हैं, और वो जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, उसके जैसे इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगने लगेगा कि इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है नेचर के द्वारा ताकि ये सर्वाइव कर पाएं। लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, इन्वायरमेंट में बदलाव की वजह से जिन बैक्टीरिया के अंदर क्षमता थी उस इन्वायरमेंट में रहने की, वो सर्वाइव कर गए। तो ऐसा लगा कि जैसे इन्वायरमेंट ने सिलेक्ट किया है उन बैक्टीरियाज को सर्वाइव कराने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेज नंबर 143 पर ही है, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। इसका मतलब है यहाँ पर पूछा गया है कि मान लो एक पॉपुलेशन है, उसमें से जो ए टाइप के इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसे हैं जो 10% है उस पॉपुलेशन के अंदर, और जो बी टाइप के इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसे हैं कि वो 60% पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रेट जो है, मतलब कि इंडिविजुअल्स जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के उनकी कैरेक्टर्स हैं, तो वो ट्रेट से बताया गया है। कैरेक्टर्स बेसिकली ट्रेट्स होते हैं, तो किसी के कैरेक्टर जो हैं वो एक तरीके के हैं, तो वो एक प्रकार के इंडिविजुअल्स हैं, और वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए जो 10% है किसी पॉपुलेशन में, और जो बी इंडिविजुअल्स हैं वो 60% है उसी पॉपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से इंडिविजुअल जो तरीके का है, ए और बी में से कौन से इंडिविजुअल्स जो हैं वो पहले आए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि कोई इंडिविजुअल अगर ऐसा है जो पहले आया होगा, तो वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ उसके जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज़्यादा दिखने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से ही उसका फॉर्मेशन हो चुका है। उसके जैसे लोग जो होंगे वो धीरे धीरे करके नए नए जनरेशन में ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है जो बहुत पहले आया था, अब वो क्या करेगा कि वो जब डिवाइड करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से वो डबल डबल डिवाइड करते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर वो बहुत पहले आया है तो उसके ज़्यादा नंबर्स होंगे, अगर वो लेट आया है तो उसके कम नंबर होंगे, उसके जैसे दिखने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कम होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप के इंडिविजुअल्स पहले वहाँ पर बने थे, किसका फॉर्मेशन पहले हुआ था। तो जो ज़्यादा नंबर में है उन्हीं का फॉर्मेशन पहले हुआ था, यानी कि जिनकी परसेंटेज 60% है पॉपुलेशन में, बी टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फॉर्मेशन पहले हुई है, बहुत पहले हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि जो बी टाइप के इंडिविजुअल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन में 60% की संख्या है, उनका फॉर्मेशन पहले हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, अभी भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मान लो कि अगर वेरिएशन हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो वहाँ पर उस स्पीशीज के सर्वाइव करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कैसे बढ़ जाती है। तो देखो, अगर वेरिएशन होगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर सेम ही तरीके के मान लो सारे इंडिविजुअल होते, आपने जो बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल से समझो कि अगर एक ही तरीके के सारे बैक्टीरिया होते, और वहां पर क्या होता कि सभी के सभी बैक्टीरिया जो है ऐसे होते कि वो एक पर्टिकुलर लेवल की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब मान लो अगर बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ जाए तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल लेवल की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर जैसे ही ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो उन सारे के सारे बैक्टीरियाज का जो अस्तित्व होगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशन हुआ रहेगा तो वहां पर कुछ बैक्टीरिया कम से कम ऐसे होंगे जो ज्यादा हीट को सर्वाइव कर लेंगे, उसमें भी सर्वाइव कर लेंगे, तो वो बच जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरियाज तो बच जाएंगे कम से कम, बस उनमें अंतर ये होगा कि उनकी ज्यादा हीट करने की क्षमता थी इसलिए वो बच पाए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन होने की वजह से सर्वाइव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई एक स्पीशीज की। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है हेरिडिटी। इसी चैप्टर के अंदर हेरिडिटी टॉपिक है। देखो, हेरिडिटी में हमने देखा हेरिडिटी क्या होती है कि जो ट्रांसफर होता है जीन्स का या फिर इंफॉर्मेशन का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिससे कि जो बेसिक अपियरेंस है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सेम हो दोनों जनरेशन के, हर एक जनरेशन की जो आने वाली जनरेशन है उसकी बेसिक अपियरेंस सेम हो। ये कैसे हो पाता है? हेरिडिटी की वजह से, यानी कि ट्रांसफर होने की वजह से जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम जीन्स, उसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसकी वजह से जो नया जनरेशन आने वाला है उसकी बेसिक अपियरेंस अपने पेरेंट के जैसी होती है, और ये हेरिडिटी की वजह से होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को हेरिडिटी चैप्टर, हेरिडिटी टॉपिक के अंदर पढ़ना है इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका जो इनहेरिट हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कॉपी हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ट्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है या फिर डिफरेंसेस क्या है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो बेसिकली इससे हम कहना क्या चाहते हैं, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो हम देखते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनका ट्रांसफर हुआ है क्योंकि वो जीन्स में थे, यानी कि डीएनए में थे, और वो इनहेरिट हुए हैं, वो ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अलग दिखते हैं हम लोगों को, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई पेरेंट अगर है, उनका जो चाइल्ड है उसके ऐसा होगा कि क्योंकि कुछ कैरेक्टर सेम है तो वो ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए जनरल अपीयरेंस जो है वो पेरेंट का चाइल्ड के जैसा ही होगा, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के जैसा ही होगा। लेकिन वहाँ पर जो वेरिएशंस दिखते हैं हम लोगों को, जब हम लोग एक पेरेंट के किसी चाइल्ड को देखते हैं, तो उसमें वेरिएशन हमें दिखता है कि उसकी हो सकता है कॉम्प्लेक्शन थोड़ी अलग हो सकता है उसकी आईज थोड़ी सी अलग हो सकता है उसकी जो फेस की बनावट है वो थोड़ी सी अलग हो, जिसकी वजह से वेरिएशन ओवरऑल हमें दिख जाती है कि पेरेंट के बिल्कुल सेम तो नहीं है उनका चाइल्ड भी। इसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने कभी देखी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ईयर लोब जिसे कहते हैं, वो चिपका होता है, किसी किसी का वो अलग होता है। तो इसी पर बेस्ड आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 9.1। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपके क्लास के बच्चों को देखना है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लोब से क्या मतलब है। कान, आपने देखा होगा कान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है किसी किसी का, वो गाल के एरिया से चिपका हुआ रहता है, कॉर्नर, फेस का जो कॉर्नर है, जॉ लाइन जो होती है उससे चिपका हुआ रहता है, किसी किसी का अलग रहता है, नहीं चिपका हुआ रहता है। तो यही आप लोगों को देखना है कि आपकी क्लास में कितनी बच्चों के ईयर लोब्स जो हैं वो जॉ लाइन से चिपके हुए हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ईयर लोब्स जॉ लाइन से अलग हैं, नहीं चिपके हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनके उनसे पूछना है कि वो अपने घरों में देख करके आए कि उनके पेरेंट्स के कान के जो ईयर लोब्स हैं वो क्या चिपके हुए हैं जॉ लाइन से, या फिर वो डिटैच्ड हैं, नहीं चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे पेरेंट्स जिनके कान के ईयर लोब्स चिपके हुए हैं जॉ लाइन से, उनके चाइल्ड में भी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मम्मी ऐसी हैं जिनके कान के ईयरलोब्स जो हैं वो चिपके हुए हैं और पापा ऐसे हैं जिनके चिपके हुए नहीं हैं, तो 50-50 चांसेस हैं कि या तो कान के लोब्स जो हैं वो चिपके हुए रहेंगे या फिर नहीं चिपके हुए रहेंगे। या फिर मान लो अगर किसी के पेरेंट ऐसे हैं कि जिनकी मम्मी के भी कान के ईयरलोब्स जॉलाइन से चिपके हुए हैं और पापा के भी कान के चिपके हुए हैं ईयरलोब्स, तो ऐसे में जो चाइल्ड होगा उसके कान के ईयरलोब्स डेफिनेटली आप लोगों को चिपके हुए मिलेंगे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि कान के ईयरलोब्स का चिपका हुआ होना या नहीं होना, जॉलाइन से जुड़ा हुआ होना या नहीं जुड़ा हुआ होना, ये कैसे निर्भर करता है। ये ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसका ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है ज़रूर ये कहाँ होगी, हमारे डीएनए में इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, तभी ये इन्फॉर्मेशन जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। साथ में आप लोग ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे आपके क्लास में ऐसे होंगे बच्चे जिनके कान के ईयरलोब्स नहीं चिपके होंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर होता है कान के ईयरलोब्स का ना चिपका होना, डिटैच्ड होना, ये ज़्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए इस कैरेक्टर को डोमिनेंट कहते हैं, यानी कि ज़्यादा देखे जाने वाले कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो ज़्यादा पाए जाते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और वो कैरेक्टर जो उसी के ऑपोजिट हैं, जैसे कि या तो चिपका हुआ होगा या फिर नहीं चिपका होगा, तो अगर चिपका हुआ होगा ज़्यादा मिलता है तो नहीं चिपका हुआ होगा जो है वो कम मिलता होगा। तो ऐसे कैरेक्टर जो कम मिलते हैं उन्हें रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, और जो ज़्यादा मिलते हैं, जिस तरीके के कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो कान से ना चिपका हुआ होना, कान का जो ईयर लोब्स है उसका जॉलाइन से ना जुड़ा हुआ होना, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये ज़्यादा पाया जाता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। और वो आप लोगों ने देखा भी होगा जब एक्टिविटी की होगी, तो परसेंटेज आप जब निकालेंगे अपनी क्लास के ऐसे बच्चे जिनके कान के ईयर लोब्स चिपके हुए रहेंगे जॉलाइन से, तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको वो कम मिलेंगे। और ऐसे बच्चे जिनके कान के ईयरलोब्स नहीं चिपके हुए रहेंगे जॉलाइन से, उसकी परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगी। अब हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स दो होते हैं, यानी कि पेरेंट्स हमारे दो होते हैं, एक मेल पेरेंट होते हैं एक फीमेल पेरेंट होते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो मेल पेरेंट के अंदर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो फीमेल पेरेंट के होते हैं। तो यहाँ पर जब नया जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरीके से होता है, इनहेरिटेंस के क्या क्या रूल्स हैं वो हमें समझना है कि किस तरीके से, मतलब अगर मान लो ट्रांसफ़र होता भी है कुछ कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट टू दी चाइल्ड नेक्स्ट जनरेशन, तो वो होता किस आधार पर है। तो इस बात की स्टडी एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था मेंडल। मेंडल ने कुछ अलग अलग रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के, जिसके आधार पर आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग या फिर टू दी यंग जनरेशन। अब देखो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल पेरेंट है और जो मेल पेरेंट है, इनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इन कैरेक्टर्स जो नया जनरेशन बन रहा है उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन होकर के पहुँचते हैं। तो जो शो होंगे कैरेक्टर्स उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि या तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो मम्मी के शो होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो पापा के शो होंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर के अपियर होने के जो चांसेस हैं वो 50-50 होते हैं इन दी यंगर जनरेशन। तो जानने से पहले कि रूल्स क्या हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1884 में। ये रिलीजन से कैथोलिक थे, यानी कि क्रिश्चियन थे। तो ये मोनेस्ट्री में पढ़ा करते थे जब छोटे थे, तब तक इन्होंने मोनेस्ट्री में पढ़ा। उसके बाद इन्होंने साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की, जिसके बाद वो सोचते थे कि वो टीचर बन जाए। तो टीचर का एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि खुद ही कुछ करते हैं। तो जहाँ पर ये रहा करते थे, जिस चर्च में ये रहा करते थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनके जो बगीचा रहा होगा वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे उगाना शुरू कर दिया। इन्होंने पढ़ा था, कुछ साइंटिस्ट ने मटर के पौधों पर काम किया था इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाने के लिए, इनहेरिटेंस कैसे होती है इसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इनसे पहले बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया था जिसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी इनके पास थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके पास साइंस की भी नॉलेज थी और मैथ्स की भी नॉलेज थी। इसकी वजह से जो इन्होंने काम किया मटर के पौधों के ऊपर और जो रूल्स इन्होंने बताए, मटर के पौधों के ऊपर काम करने के बाद वो काफी ज्यादा सटीक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी साइंस का भी इस्तेमाल किया और मैथ्स की जो नॉलेज है उसको भी यूज करके इन्होंने जो रूल्स बनाए वो उन्होंने सबको जब बताए तो सब लोगों ने कहा कि काफी समय बाद जब लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो इनकी जो रूल्स है उनको आज हम फॉलो करते हैं। और जो रूल्स इन्होंने दिए थे उन्हें हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में पढ़ते हैं। अलग अलग कानून जो कहा जाए इनहेरिटेंस के होंगे, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे लगाने शुरू किए। और मटर के पौधे भी ऐसे वो लगाते थे कि मान लो उसमें ना जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो ऐसे होते थे कि अगर एक कैरेक्टर कुछ दिखा रहा है तो उसका दूसरा वाला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसके विपरीत होना चाहिए। कि ऐसा होगा मान लो कि मटर का पौधा, एक मटर का पौधा जो होगा वो छोटा होगा, शॉर्ट प्लांट होगा, तो दूसरा पौधा वो उन्होंने ऐसा लिया जो टॉल प्लांट था। तो इस तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाले पी प्लांट इन्होंने उगाए। जैसे मान लो कि एक मटर ऐसा होगा कि जिसके सीड्स जो होंगे वो बिल्कुल राउंड और फुल होंगे, बिल्कुल गोल मटोल से उसके मटर के दाने होंगे, और दूसरा मटर का दाना ऐसा होगा कि जो बिल्कुल सूखा हुआ पिचका हुआ सा होगा, तो उनको इन्होंने ग्रो किया। उसके बाद क्या किया कि इनकी क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कराने का मतलब है कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, मेंटेन करके, खुद मेंटेन करा के। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वहां पर क्या होता है प्लांट्स में एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके प्लांट के जो स्टिग्मा है, फ्लावर का जो स्टिग्मा है पिस्टल का, उसके ऊपर ट्रांसफर होता है, तो वहां पर इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। इन्होंने क्या कराया कि जो नया जनरेशन के बनाना चाहते थे उसमें इन्होंने क्रॉसिंग कराई, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया बिटवीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स, मतलब कि ऑपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को लेकर के इन्होंने उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराई, और उससे नया जनरेशन किस तरीके का मिल रहा है वो इन्होंने चेक किया। तो इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि राउंड या फिर रिंकल्ड सीड्स, गोल मटोल दाने या फिर सूखे हुए दाने वाले मटर, तो इस तरीके से उनके पौधे लिए, या फिर पौधे ऐसे लिए जो टॉल प्लांट्स थे या तो बिल्कुल शॉर्ट प्लांट्स थे, और इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। फिर उन्होंने वाइट और वायलेट फ्लावर वाले पौधे लिए। इस तरीके से इन्होंने बहुत से अलग अलग प्लांट्स लिए, और उसमें भी ये ध्यान रखा कि उनके कैरेक्टर्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए। 7 मेन कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर आपको 3 बताए गए हैं, बाकी के आप लोग 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कराया कि ऑपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को लेकर के उनका रिप्रोडक्शन कराया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। तो जब इन्होंने यहाँ पर प्रोजेनी वर्ड लिखा हुआ है, जो प्रोजेनी वर्ड है वो कुछ नया नहीं है। प्रोजेनी का मीनिंग होता है जेनरेशन, तो अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फिर वन प्रोजेनी टू अनदर प्रोजेनी, तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोजेनी से भी बोला जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के, एक पर्टिकुलर प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रोजेनी कह देंगे। तो मान लो अगर ऐसा कहा जाए कि जनरेशन के उसमें हम लोग भी कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं प्रोजेनी, या फिर सेम जनरेशन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं तो उनको भी हम प्रोजेनी से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टॉल प्रोजेनी, शॉर्ट प्रोजेनी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि एक ही प्रकार के इंडिविजुअल्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉल प्रोजेनी इतनी दिखी, इतनी परसेंटेज ऑफ टॉल प्रोजेनी हमें दिखी, या फिर इतनी परसेंटेज ऑफ शॉर्ट प्रोजेनी दिखी, या फिर नेक्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी है उसमें इतने इंडिविजुअल्स दिखे। इस तरीके से प्रोजेनी जो वर्ड है वो सिंपली यूज कर लिया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रेफर करने के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि मेंडल ने जब टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई, तो जो नया प्रोजेनी आया उसको उन्होंने नाम दिया F2 प्रोजेनी, और जो पहले वाली पेरेंट वाली जनरेशन जो थी उसको F1 प्रोजेनी कह रहे थे, और जो उनसे रिप्रोडक्शन होने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो जनरेशन हुई नेक्स्ट जनरेशन की, उसको इन्होंने F2 प्रोजेनी कहा। तो इन्होंने ये देखा था कि जब F1 प्रोजेनी यानी कि पेरेंट्स की, वहां पर उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स ली थी, एक शॉर्ट ली थी, बिल्कुल छोटा पौधा लिया था पी का, और दूसरा लिया था एक टॉल पी प्लांट, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया गया, क्रॉसिंग करवाई गई। तो उनसे जो F2 प्रोजेनी आई, जो नेक्स्ट जनरेशन मिली, उसमें इन्होंने देखा कि जो सारे के सारे प्लांट्स थे उसमें से कोई भी शॉर्ट नहीं था, 4 प्लांट्स उनके हुए जिनमें से कोई भी शॉट नहीं था, सारे के सारे टॉल थे। और इसमें ना तो कोई शॉट निकला, ना कोई ऐसा निकला कि जिसकी एवरेज हाइट हो जाए। तो ना एवरेज हाइट वाला पौधा मिला, ना कोई बिल्कुल छोटा पौधा मिला। यहाँ पर जो सारे पौधे मिले वो टॉल प्लांट्स मिले। तो इस आधार पर मेंडल ने कहा कि जो F2 जनरेशन आई है उसके अंदर, क्योंकि सारे के सारे पी प्लांट्स में हम लोगों को सभी के सभी टॉल दिख रहे हैं, तो इससे इन्होंने कहा कि जो टॉल होने का कैरेक्टर है पी प्लांट्स के अंदर, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्योंकि अगर फर्स्ट जनरेशन जैसी आती है, पेरेंट जनरेशन से जो सबसे पहले जनरेशन हमें मिल रही है, उसमें हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरेशन आ रही है उसमें एक ही प्रकार के सभी कैरेक्टर दिखने का मतलब है कि वो कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। और अगर टॉल होना डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट होना, बिल्कुल शॉर्ट होना रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरीके से इन्होंने पहली जनरेशन जो देखी उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।